अज्ञानी व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी, जिनको भक्ति का तत्व का ज्ञान नहीं, रस का ज्ञान तो बहुत दूर की बात, वो व्यक्ति भी शास्त्रम दृष्ट्वा, शास्त्र को देख करके ब्रजविलासी जो कृष्ण है उनके तत्व का निरूपण कर सकता है। तात्पर्य क्या? तात्पर्य गंभीर है, ऊपर से तो ऐसा ही मालूम पड़े किंतु भीतर से ये है, ओ मेरा जैसा मूर्ख घर गृहस्थी में फंसा हुआ मैं बालक हूं इस सब तत्व में, मूर्ख हूं। बहुत दीनता से ये कह रहे हैं, यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई हमारे ऊपर में, तो मेरा जैसा बालक आदमी भी, मूर्ख व्यक्ति भी, कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा, कुरुते माने कृष्ण जो ब्रजविलासी हैं उनके रूप का वर्णन कर सकता है। ब्रजविलासी कृष्ण ही कौन है? तद्रूप चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु जी का एक रूप है, कौन? कृष्ण, ब्रजविलासी के, कृष्ण के नहीं। कृष्ण कहने से द्वारकाधीश मथुरेश भी हो जाते, इसलिए उनका नहीं, ब्रजविलासी के जो कृष्ण है, ब्रज में विलास करने हैं, उनके रूप हैं, कौन? ये चैतन्य महाप्रभु, उनके भाव को प्रकाश करने के लिए ये जगत में आए हैं। विशेष करके ब्रजविलासी जो कृष्ण है, ये राधा जी के भाव को लेकर के गौ रूप में यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं, और उस राधा के प्रेम को बतलाने के लिए, उस तत्व को भी ये निरूपण कौन कर सकता है? महाप्रभु जी की कृपा हो किसी के ऊपर में, बालो अभी एक बालक भी, मूर्ख भी, अनजान करने वाला भी, तो भी तत्व को निरूपण कर सकता है। किंतु शास्त्रम दृष्ट्वा किस लिए लगाया? शास्त्रम दृष्ट्वा तत्व निर्णय कर सकता है, कह देगा जैसे राधा जी सबसे बड़ी है, राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति है, किंतु ये सबके लिए मान्य नहीं हुआ। किसके लिए मान्य होगा? जो भक्त हैं वो लोग मान्य, महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, ये हम लोग तब बिना विरोध के मान लेंगे। जगत के लोग मानेंगे? नहीं मानते हैं। किंतु हाँ, जब उनको भक्ति होती है इन लोगों के संग में, और उस भक्ति के द्वारा फिर अब शास्त्र जब देखते हैं, और शास्त्रों में भी महाप्रभु जी का वर्णन मिलता है, तब बाध्य होकर के उसको स्वीकार करते हैं। बिना जो पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र जानने वाले विद्वान लोग हैं, उनको तो शास्त्र का प्रमाण चाहिए, और भक्तों को शास्त्र के प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं, यदि मैं ऐसे कह देता जो स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी ने ऐसा कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है, या मैं ऐसा कह रहा हूं ब्रजविलासी कृष्ण थे और उनके तद्रूप जो अवतार महाप्रभु हैं, उनके कारणों को वर्णन करने में मैं ऐसे ही कह दूं जो ये कारण है, राधा जी का भाव और कांति लेकर के तीन मुख्य भावों को, राधाया की दृशा, राधाया प्रणय महिमा की दृशा, अनय वा अश्वादो जिनाद्भुत मधुरिमा की दृशा, उनके द्वारा जो मधुरिमा कृष्ण की आस्वादित हुई थी वो कैसी है, और माधुरिमाओं को आस्वादन करके चारों प्रकार की माधुरिमा कौन, वेणु रूप गुण और लीला, इनको आस्वादन करके उनको कैसा सुख उत्पन्न हुआ, हम कह देंगे जे ऐसा हुआ, नाम नहीं बतलाएंगे जे कैसे हुआ, कारण कोई नहीं दिखलाएंगे, शास्त्र के वचन को हमने नहीं उद्धार किया, हमारी बात कोई नहीं मानेगा, केवल हम लोग कहते हैं जे चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो कोई नहीं मानेगा, यहां तक कि कृष्ण चरित्र को राधा जी गौरांग चरित्र लिखने वाले वो वृंदावन के एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कल्याण प्रेस गोरखपुर वाले और दूसरे संप्रदाय के लोग कोई भी महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, पढ़े चैतन्य चरितामृत में उन्हीं से उनका चरित्र दे रहे हैं, किंतु ये भगवान है स्वयं कृष्ण ये नहीं देते, बाकी और सब चरित्र तो उनका ये भक्ति कैसी है, केवल अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने किया, असल अंश को छिपा करके बाकी सब वर्णन किया। तो अभी लोग आकृष्ट हो रहे हैं, उनको कुछ न कुछ लाभ होता है, तब मूल ग्रंथ को देखते हैं, उसमें सब प्रमाण देखते हैं, ये महाप्रभु जी स्वयं भगवान थे। अंत कृष्ण बहिर् गौरंग इत्यादि हिमांगो बरांगश्चंदनांगदी सुवर्ण वर्णो हिमांगो बराश्चंदनांगदी इत्यादि ये सब हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण वर्णो तिशा कृष्ण सांगोपाकां पार्षदम जगह संकीर्तन प्राय जजंती ही ये सब दिया, और सब हजारों प्रमाण दिया, तब जाकर के वो मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए कहते हैं मैं केवल ऐसे ही नहीं कहूंगा, ऐसे ही वर्णन नहीं करूंगा, शास्त्र प्रमाण के साथ में हमारे गोस्वामियों ने जो शास्त्र प्रमाण दिए उसके आधार पर ब्रजविलासी की जो लीलाएं हैं कृष्ण की, और उसी अपनी पंचाओं को लेकर के जो आए और आस्वादन किया नाम नहीं, राधा जी के भाव कृष्ण के प्रति जो है उस महाभाव इत्यादि का को जगत को दिखलाने के लिए, और किसी को लोभ होने पर वैसी कुछ उसकी एक छींच जगत को देने के लिए उज्ज्वल रस का ये चैतन्य महाप्रभु आ रहा है। इस तत्व को सहज ही वो निर्णय कर सकता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। क्या हुआ करें, मैं बालक अज्ञ हूं, किंतु महाप्रभु जी की कृपा हुई। कैसे कृपा हुई? स्वरूप दामोदर जी की कृपा रघुनाथ पर हुई। महाप्रभु जी की कृपा रूप और सनातन गोस्वामी इत्यादि पर हुई, और उनकी कृपा से उनके हृदय के अंदर में जो प्रेम छलका उसकी एक दो किरणें एक दो बूंदे छींटे हमारे ऊपर हुई। रघुनाथ दास जी का इन्होंने संग किया था, इसलिए एक बालक व्यक्ति भी शास्त्र को के अनुसार में उनका तत्व निर्भर कर सकता। अब वही जा रहे हैं करने के लिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। अब यहां पर ये दे रहे हैं पांचवें श्लोक की व्याख्या करेंगे। चतुर्थ का हो गया है, अनर्पित चरण की व्याख्या हो गई है, पांचवा का दे रहे हैं, उसके लिए ये करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। बहुत गंभीर विषय जा रहे हैं, इसलिए चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत चंद्र और गौर भक्त गदाधर पंडित इत्यादि की वंदना करके उनसे शक्ति संचरित करने के लिए प्रार्थना करते हुए एक कारण, बिना उनकी कृपा के नहीं होगा। यदि ऐसा विश्वास नहीं होना तो ये भक्ति हो ही नहीं सकती। एक बात याद रखना, भक्ति में सबसे बाधा क्या चीज है? कोई दस नमा अपराध, दस नमा अपराध, दस नमा अपराधों में सबसे भयंकर पहला है साधु संतों के किसी प्रकार से गुरु पदाश्रय करके भगवान का नाम आरंभ किया है, उसमें कोई दोष त्रुटि भी हो खबरदार निंदा बंद करो, तनिक भी निंदा। हो सकता बिना दोष का, जब तक कि प्रेम नहीं होता तब तक दोष रहेंगे, निंदा मत करो, भले ही उनसे अलग रहो, किंतु यदि वाणी से निंदा की तो बिजली की करंट की भांति, जैसे बिजली वहां पर जल रही है और आग लग गई और बाल्टी से पानी उसको निभाने के लिए दूर करने के लिए शांत करने के लिए पानी यहां से बाल्टी का फेंका तो पानी के साथ बिजली का करंट लग करके तुम बच जाएगा। बालक नहीं समझता, ठीक इससे भी भयंकर है वैष्णव निंदा। उसी के निंदा करने के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उछट हमारे अंदर किसी भी स्थिति में वैष्णवों की निंदा, साधुओं की निंदा, गुरु की अवज्ञा, तथार्थवादम, हरिनाम कल्पनम, नाम के बल पर पाप बुद्धि, ये सब मत कर। इसका समस्त शास्त्रों ने और समस्त आचार्यों ने इसके लिए मना, हंसी दिलगी में भी मत करो, निंदाई, हसी दिलाब की भी किसी का दोष मत देखो, उसके गुणों को देखो। कोई वैष्णव यदि हुआ है, दीक्षा लिया है, हरिनाम लिया है, कोई न कोई जरूर गुण है, नहीं तो वो कैसे टिका हुआ है। उनके गुणों का अनुसंधान करो, उसके दोषों को कभी कदापि मत देखो। यदि कुछ ऐसा दिखता है तो उसे थोड़ा सा दूर रहो, किंतु निंदा इत्यादि नहीं। इसलिए सब वैष्णवों की वंदना स्तुति स्तव भी करना चाहिए। यदि हो गया तो क्या करना चाहिए, परिताप पूर्वक रोते रोते क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए उनके निकट जा करके। मैं कैसे उनके निकट जाऊं, यदि जीवित है तो जाओ और उनसे निकट भिक्षा प्रार्थना, और यदि जीवित नहीं है तो क्या करो, रिपेंट करते हुए अश्रुपूरित नैनों से पुनः पुनः उनसे प्रार्थना, और नहीं तो ऐसे करते करते अभ्यास होकर के गुरु जी की निंदा, भगवान की निंदा, सभी की निंदा करते करते रसातल में जाएंगे। इसलिए गौर भक्तों की ये वंदना कर रहे हैं। चतुर्थ श्लोक के अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोक का विवरण किया अर्थ क्या, पहला बतलाया, उसके पहले बतलाया भगवान के अवतार का कारण है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य परित्रणाय तदात्मानम सिजाम्यम परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इस श्लोक पर विचार करना चाहिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म की अभ्युत्थान माने बढ़ती होती है। माने क्या, नास्तिक लोग धर्म का कुर्ता पहनकर वेश बनाकर अधार्मिक बातों को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। इसको कहते हैं अधर्म का अभ्युत्थान। जैसे नास्तिक लोग आजकल प्रचार करते हैं धर्म कर्म की कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति के तरफ में मत जाओ। यदि एक दुखी जीव को गरीब अन्न को एक अन्न एक मुट्ठी अरे एक कपड़ा दे दो तो इससे भगवान की और दूसरी कोई सेवा नहीं। रोगियों के लिए उनकी चिकित्सा कराने के समान में और कोई सेवा नहीं, लगने लीलों कोई सेवा ही भगवान की यथार्थ सेवा है और कोई सेवा नहीं। भगवान का नाम करना इत्यादि शब्द कोश लाए और इसी के आड़ में अपने वो अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। ये सब अधर्म जब बढ़ जाता है, जैसे कर्ण कहता है, दुर्योधन कहता है, हम लोग परम धार्मिक हैं, कृष्ण अधार्मिक है, पांडव लोग अधार्मिक है, बतलाओ तो एक स्त्री के पांच पति होते हैं, इसे बढ़कर के अधर्म क्या हो सकता है। देखो तो इनके यहां झूठा लबार धूर्त इनका मित्र बना हुआ है। कौन, कृष्ण, जिनके बाप का माता का कुछ भी ठीक नहीं, बातों का ठीक नहीं, जन्म से ही चोरी करना सीखा, ऐसे व्यक्ति इसके सहायक हैं, जो कि झूठ बोलता है सब समय। अर्जुन भी वैसे ही, उनके भक्त लोग भी ऐसे, जयद्रथ को खुले आम झूठ बोल करके मारा और मरवाया इत्यादि सब आरोप करते और अपने को धार्मिक करते हैं। तो जब ऐसे अधर्म की बढ़ती हो जाती है तब तब भगवान का जन्म होता है। कौन, ये सब युग धर्म है, विश्व को सृष्टि करके उसका पालन करना, जो पालन करने का काम है ये विष्णु का है। कौन, क्षीरोदशाय, जैसे क्षीरोद अर्थात दूध युक्त मैया अपने स्तन से बच्चों का पालन करती है, ऐसे विष्णु सबका पालन पोषण। इसलिए असुर को संहार करके और जीवों को पालन पोषण करना ये विष्णु का कार्य है। इसलिए युगावतार में ब्रह्मा ये विष्णु और सब अपने अंश के द्वारा युगावतार होकर के आते हैं। यही लोग दुष्टों का संहार और युग धर्म का प्रचार करते हैं। ये कौन है, कृष्ण स्वयं नहीं है, नहीं प्रति युग युग में आते हैं, जुगे जुगे है ना, उसमें संभव युग युग में कृष्ण के लिए उन्होंने बतलाया है तृतीय अध्याय में ये एक कल्प में एक बार आते हैं, वो भी कब कल्प में, सप्तम मन्वंतर में, द्वापर के अंत में आते हैं, बस एक बार आते हैं, और उसी के बाद में महाप्रभु जी आते हैं कलिजुग में। तो एक बार आते हैं, तो ये कैसे कहा गया जी कृष्ण ही आते हैं, मैं आता हूं कृष्ण ने कहा गीता में, इसलिए वो और उनके अवतार जितने हैं अंश और कला उस सबको मैं ही हूं, इस प्रकार से कह करके उन्होंने कहा स्वयं कृष्ण नहीं आते। इस पर हम लोग अगले दिन व्याख्या करेंगे, आज यही कर रहे मंचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पति चरितमृत श्रीमती राधिका जी का जन्म तिथि है आज, हम लोग उसका अधिवास मना रहे हैं। यद्यपि आज बरसाने में और रावल में आज ही उनका आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, किंतु वैष्णव रीति के अनुसार में विद्धा एकादशी, विद्धा कोई भी व्रत अष्टमी राधाष्टमी नहीं मनाना चाहिए। विद्धा मतलब होता है जैसे कांटा किसी चीज में गड़ जाता है तो उसको कहते हैं कांटा बिध गया, तो वैसे ये बिध जाता है सप्तमी अष्टमी में। आज एक घंटे के करीब सूर्योदय के बाद में अष्टमी सप्तमी है, बाकी सारा दिन और रात अष्टमी है, और सवेरे सूर्योदय के समय में अष्टमी रहेगी, इसके बाद में नौमी आ जाएगी। साथ ही साथ उन लोगों का कहना है कि राधिका जी जहां पर अधिकांश अष्टमी है जिस दिन को, उस दिन मनाया जाए। वैष्णवों का विचार है कि ऐसा नहीं, आज यदि एक सेकंड भी सूर्योदय के बाद में सप्तमी मिल जाए और सारा दिन रात यदि अष्टमी रहे तो भी आज नहीं मनाया जाएगा। जैसे एक घड़े दूध में एक बूंद शराब यदि मिल जाए सुरा, तो जैसे वो सब दूध अपवित्र हो जाता है, देवता को नहीं लगाया जा सकता, भले ही एक घड़ा पूरा दूध हो और उसमें थोड़ा सा भी यदि इतना भी सुरा मिला दिया जाए तो जैसे वो दूध अब ठीक ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पूरी अष्टमी भी रहे किंतु थोड़ा सा भी सप्तमी मिल जाएगा तो इसको सप्तमी का वेद कहते हैं, पूरे को खराब कर देता है। इसलिए वैष्णव जितने हैं शुद्ध वैष्णव आज के दिन नहीं करके, कल यदि अष्टमी नहीं भी रहेगी तो कोई भी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं अष्टमी रहे तो भी करें, और कल तो अष्टमी भी मिल रही है, इसलिए वैष्णव लोग उस व्रत को करेंगे जिसमें शुद्धा अष्टमी हो या नवमी का मिला हुआ हो भाव, इसलिए आज हम लोगों ने नहीं किया। किंतु वृंदावन के जितने वैष्णव हैं, राधा कुंड के जितने वैष्णव लोग हैं जो इस सब का विचार रखते हैं, वो सब कल ही करेंगे, आज वही करेंगे, जो इन सब का ज्ञान नहीं रखते हैं वो लोग सब आज करते हैं। जिनका कुछ वैध ब्राह्मणत्व भाव है, स्मार्ट जिसको कहते हैं, इसलिए शुद्ध वैष्णव लोग आज के कल के दिन में सब व्रत करेंगे। जिस समय में ब्राह्म मुहूर्त था आज ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय से 1 घंटा 56 मिनट पहले, 36 मिनट। तो उसमें आज क्या था? उस समय तो पूरा सप्तम ही था, सूर्य उदय के बाद तक 1 घंटे, तो उस समय कैसे जन्म मना दिया? इसलिए आज ये उचित नहीं। तब जो मनाते हैं, जैसे मना तो रहे हैं, हम इसी से खुश हैं कि लोग मना रहे हैं, बस इतना। इसलिए हम लोग विरोध नहीं कर, ठीक, जो मना रहे हैं अष्टमी मननी चाहिए, दशमी के दिन भी मना लें, 5 दिन पहले भी राधाष्टमी कोई मना ले, रोज रोज मना ले, बहुत आनंद की बात है। इसलिए हम लोग उसका अनुमोदन करते हैं, ठीक ही है। नास्तिकों से 1 कोटि गुण अच्छे हैं जो कि नास्तिक लोग एकदम मानते ही नहीं। नास्तिकों ने कल राधा जी का जन्म आविर्भाव तिथि है, तकल हड़ताल मनाएंगे। जितने नास्तिक है सब सिगाल के समान है, एक दिन पीछे या आगे रखते तो भी एक बात थी। कल हमने आदि चतुर्थ आरंभ किया था, जिसमें राधा जी की महिमा सर्वत्र उसमें वर्णित है, किंतु आज अधिवास तिथि होने से हम लोग राधा जी की महिमा आज कुछ वर्णन करें, क्योंकि कल तो उत्सव में ही लग जाएगा, सवेरे भी वैसे ही उत्सव में ही लगेगा। कल सवेरे हम लोग वहां से महिलाएं भक्त लोग कीर्तन करते हुए राधा जी के लिए चाव ले आएंगे, तरह तरह के आभूषण, कपड़े लत्ते और उनके लिए तरह तरह के विविध प्रकार के प्रस्तुत करके खाद्य पदार्थ इत्यादि, दधि दुग्ध इत्यादि सब लाते, उसी से अभिषेक होगा आते ही, और फिर उनकी बधाइयों के कीर्तन होंगे, और फिर जो उत्सव होगा दधि और हल्दी इत्यादि मिलाकर के सबको वो दिए जाएंगे, इधर से होगा। शाम को फिर हम लोग बैठेंगे विभिन्न वक्ता लोग, राधा जी के अपराकृत चरित्र पर कुछ अपना प्रकाश डालते हुए पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। अभी हम चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन किया गया है उसके संबंध में वर्णन करेंगे। पहली बात तो ये, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ, जैसे कृष्ण के लिए समझते हैं कि नंद गांव में ही उनका जन्म हुआ, ऐसे लोग समझ लेते हैं, किंतु नंद गांव में कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, न बरसाने में राधा जी का। कल्पांतर भी हम देखते हैं, कल्प भेद हरि कथा सुहावा, कल्पांतर से भी यदि मान लिया जाए तो कृष्ण का कभी कल्पांतर में भी नहीं सुना जाता कि नंदगांव में जन्म, कल्पांतर में भी नहीं सुना जाता। इसलिए राधिका जी के लिए भी कल्पांतर की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? कृष्ण का जन्म सब समय महावन के अंतर्गत में जो गोकुल है, गोकुल और महावन एक ही है। ये गोकुल कहने से आधुनिक गोकुल को मत समझिए, जो वल्लभाचार्य के गोस्वामियों ने जिसकी की, वो तो गौओं का खिड़क है। गोकुल में जहां महावन है, अभी जहां पर जन्म स्थली है, वहीं पर उनका विवाह हुआ था। ये हमारे नारद ऋषि जी परम भक्त, वो वहां पर उपस्थित हुए और देखा चारों तरफ में आनंद की धूम मची हुई है। ये भी वैसा ही वेश धारण करके उस सभा में उसमें मिल गए और वीणा यंत्र पर नारद बजाए राधिका रमण, राधिका रमण जी का राधे राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलिए
जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय।
नारद जी उस भीड़ में खो गए, उनको किसी ने देखा नहीं, भक्तों में मिल करके और इस प्रकार से आनंद से जन्मोत्सव उन्होंने देखा, नंदोत्सव देखा और दर्शन करते प्रतिदिन करते करते 15 दिन हो गए। 16-17 दिन हो जाने के बाद में उनको अब कुछ फुर्सत हुई चिंता करने की, तो उन्होंने चिंता की। समस्त कारणों के कारण परब्रह्म साक्षात सच्चिदानंद वस्तु सभी के आदि स्वयं अनादि ये प्रभु यहां पर अवतरित, जरूर उनकी लादिनी शक्ति भी, स्वरूप शक्ति भी जरूर प्रकटित होगी इसलिए उनको खोजने के लिए चल पड़े। ब्रज में इधर उधर चारों तरफ में खोजा, अंत में उन्होंने विचार किया नंद बाबा के मित्र वृषभान महाराज कृतिका जी, नंद गेहनी जसोदा जी की सहेली हैं, इसलिए हो सकता है कि उनके घर में वो आविर्भूत हुई हो। इसलिए चारों तरफ में जब कहीं पता नहीं चला तो वो रावल नामक ग्राम में गए। जिस समय नंद बाबा नंद गांव को छोड़ करके अपने पूरे परिजनों के सहित अपने पिताजी और अपने समस्त भाइयों के साथ में केशी दैत्य के अत्याचार से जबकि चले आए महाबन में, तो उनके परम मित्र विश्वभानु महाराज भी अपने भाइयों के साथ में और अपने सब लोगों के साथ में यहां पर चले आए। बहुत दिन यहां पर रहे तो कृष्ण का आविर्भाव हुआ। अब उस समय में जमुना के एकदम ठीक ऊपर में बसे हुए रावल गांव में रहते, ये उनकी कहा जाता है कि ये उनकी ससुराल भी है। रावल उसको कहते हैं जो कि सर्वमान्य व्यक्ति हो, सभी लोग उनको आदर देते हैं और राजा के समान होते हैं, इसलिए उनको रावल पदवी होती है। इसलिए जहां वो रहते थे उसको भी रावल कहा जाने लगा। उन्हीं के एक दिन वृषभानु महाराज जी कल के दिन और आज के रात के अंत में ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन जमुना में स्नान करते थे। उस समय जमुना में कितना पानी, अथाह पानी रहता था, अगाध पानी उस समय रहता था और बहुत ही स्वच्छ निर्मल, लोग जमुना का ही पानी पीते थे, इधर उधर का पानी नहीं पीते थे। आजकल जमुना का पानी कोई नहीं छुएगा, कुएं का पानी पिएंगे, नल का पानी पिएंगे और सब पिएंगे, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं व्यवस्था। बहुत ही सुंदर निर्मल स्वच्छ, कहां जमुनोत्री का पानी, गंगोत्री का पानी आता था। तो उन्होंने प्रतिदिन जाकर के स्नान करने का नियम बना रखा था। आज से देर उन्होंने देखा, स्नान करते ही देखा एक किलकारी मारने की आवाज आई, छोटे से नन्हे बच्चे की, सद्यजात अभी उत्पन्न। देखा आंख खोल करके, यदि डुबकी लगा करके देखा, सुंदर कमल का वन वहां पर है, सब अष्टदल सतदल सब कमल खिले हुए हैं और एक सतदल कमल के ऊपर में एक छोटी सी परम सुंदरी बालिका अपने पैरों से खेल रही है। कभी उसका अंगूठा चूसती है, कभी रोदन करती है, कभी किलकारी मार करके हंसती है, कभी कुछ। बड़े आनंदित हुए और आनंदित होकर के उसको अपनी गोदी में उठा लिया। उससे यहां पर दिखलाया गया है जन्म नहीं किंतु जन्म लीला हो भी सकती है कल्पांतर में, किंतु यहां पर इसमें दिखलाया गया जैसे जन्म नहीं, जैसे कृष्ण का जन्म नहीं प्रकट रूप में मथुरा में, जन्म नहीं आविर्भूत में है, ऐसे ही वो भी शक्ति आविर्भूत, कहां से आविर्भूत हुई, कैसे हुई, किसकी लड़की, ये कुछ पता नहीं।
दिखाएंगे
ये विदग्ध माधव रूप कोशा उन्होंने इसी के साथ में जोड़ सकते हैं विंध्याचल की दो लड़कियां हुई और जहां पूतना उसको लेकर के उड़ी और यहां पर जोगमाया ने किसने मंत्र पढ़ा और मंत्र के प्रभाव से वो भगी वहां से और प्राण लेते हुए किसी प्रकार से बचती हुई यहीं पर फेंक करके और भगी तो ये राधा जी यहां पर गिर गई कमल वन के ऊपर में और चंद्रावली जी विदर्भ में वहां पर गिर पड़ी उनका उनको उन्होंने उठा करके पाला पोसा और उन्होंने इनको पाला पोसा उसके साथ में जोड़ सकते हैं। इस तरह से वो कमल के वन के ऊपर में खेल रही थी विश्वानु महाराज ने उनको उठा लिए हृदय से लगा दिया और घर में ले आए और अपनी पत्नी कृतिका सुंदरी जी को ये दे दिया। इसीलिए राधा जी के लिए सब जगह विश्वभानु नंदिनी अधिक आता है विश्वभानु नंदिनी विश्वभानु पुत्री विश्वभानु कुमारी विष्णुभान जाया इत्यादि बहुत से बातें कृतिका के लिए कम शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनको देने के बाद में बड़े प्रसन्न हुए और अपनी उनको तो एक ही लड़का था श्रीदाम और इस लड़की के होने के बाद में दो एक वर्ष के बाद में एक और लड़की हुई थी जिसका नाम अनंगमंजरी। दो बहनें और एक भाई ये तीनों ही के प्राण थे कृष्ण अनंगमंजरी के भी श्रीमती राधिका जी के भी और श्रीदाम के भी प्राण थे। यहां तक कि राधिका जी अपनी छोटी बहन को इतना प्यार करती हैं कभी कभी स्वयं बाएं कृष्ण के बाएं से हटकर अपनी बहन को अपने स्थान पर बैठा देती हैं बाएं की तरफ और अपने दाहिने तरफ में चली जाती है। ऐसी ही राधा जी अपनी बहन के प्रति स्नेहशील है उन्होंने दे दिया उसका पालन पोषण होने लगा। अभी दो चार दिन की अभी थी नारद ऋषि जी घूमते यहां पर उपस्थित विश्वभानु महाराज जी को देखा जे बड़े प्रसन्न है पूछा आपको कोई संतान हुई उन्होंने कहा हाँ हमको एक संतान तो हमको दिखलाओ तो मैं उसको देख करके उसका जन्म सौभाग्य और ये सबका भविष्य मैं निर्णय करना चाहता। उन्होंने श्रीदाम को लेकर के उनके गोदी में रख दिया श्रीदाम भी अभी एक वर्ष के थे राधिका जी एक वर्ष छोटी हैं उनकी गोदी में रख दिया अभी शिशु ही हैं उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए कहा जी और कुछ संतान अभी दो चार दिनों के अंदर में हुई तब उन्होंने कहा जी हाँ एक बेटी हुई। उन्होंने कहा जी चलो पहले चलिए आपको दर्शन कराऊं। जब घर में गए तो देखा जे छोटी सी एक बालिका ऐसे मानो सुंदर सोने की वो प्रतिमूर्ति हो देख करके बड़े प्रसन्न हुआ बोले जी आप थोड़ा सा जमुना जल अक्षत चंदन रोली दुर्वा हरिद्री हरिद्रा सुपारी पान ये सब व्यवस्था कीजिए मैं इसको अपने आराध्य देव को पूजन करके और इसका ये सब देखें ये कैसा इसके शुभ लक्षण में जन्म हुई इसके कैसे सौभाग्य है क्या होगा और इसके पूरे जन्म की बातें हम आपको बतलाएंगे। उन्होंने प्रसन्न होकर के वो वहां से बाहर निकल करके ये सब चीजों की व्यवस्था में लग गए और ये स्तव स्तुति करने लगे। जब तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय ये उसी का ही पद्म पुराण या स्कंद पुराण के सब श्लोक ये बहुत से उसके साथ साथ में और सब श्लोक वंदना करते 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 श्रीमती राधिका जी प्रसन्न इतने में देखा जो ललिता विशाखा इत्यादि समस्त सखियां भी वहां पर उपस्थित हो गई। नारद जी का जीवन कृतार्थ हो गया। ललिता जी कह रही अरे जरखो जल्दी करो, नहीं तो अभी श्रीमती जी स्वरूप शक्ति अंतर ध्यान हो जाए। बस वो जहां देख करके फिर उसका स्तुति करना आरंभ किया। इतने में थोड़ी देर में ही अंतर ध्यान, अभी तो छोटी सी बालिका थी किंतु अपना जो निजस्व स्वरूप है 14 वर्ष की है, परम किशोरी। और कृष्ण 14 वर्ष 15 दिन, ललिता जी 14 वर्ष 27 दिन, विशाखा जी 14 वर्ष, रूपमंजरी इत्यादि 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष 13 वर्ष, ये सब किशोर अवस्था। किशोर में एक प्रथम वयसंधि और एक होता है मध्य किशोर और एक पूर्ण किशोर, इसके बाद में यौवन आता है। तो पहले वाला जो है वो वयसंधि, पहले वाला है वयसंधि, पौगंड और किशोर जहां मिलता है वहीं से ये आरंभ होता है। तो ये श्रीमती राधिका जी मध्यम है और ये जो रूपमंजरी इत्यादि ये वयसंधि वाली है। इस तरह से जब उन्होंने स्तव स्तुति आरंभ किया तो वो राधा जी अपना जो स्वरूप है किशोर वयस का, जिसमें नित्य गोलोक वृंदावन में रह करके कृष्ण की सेवा करती हैं, आनंदित करती हैं, वो रूप का दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में थोड़े देर में ही अंतर ध्यान हो गया। इतने में विश्वभानु महाराज आ गए और वो छोटी सी बच्ची होकर के खेलने लग गई। फिर उनका ये सब चीजों को लेकर के नामकरण इत्यादि किया होगा और उसके बाद में ये सब देखा, देख करके बतलाया कि आप परम सौभाग्यवान हैं कि ऐसी लड़की आपको उत्पन्न हुई। ये तो चराचर विश्व ब्रह्मांड की ये जो प्रभु हैं उनकी स्वरूप शक्ति है जिससे इनकी शादी होगी, वो ऐसा ही व्यक्ति होगा जो समस्त देवता लोग इनकी आराधना करेंगे, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी इसकी आराधना करेंगे, इसकी कृपा के लिए ललायित हो। फिर पुलकित होते हुए इनका नाम करते हुए फिर चले। यह है जन्म का। कभी कभी कृतिका के गर्भ से भी जन्म लेने का कहीं कहीं पर देखा जाता है। कृतिका जी के गर्भ से ही इनका जन्म हुआ, जैसे कृष्ण का यशोदा जी के गर्भ से, ऐसा ही जन्म की बात आती है। ये कृष्ण की नित्य स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति होने पर भी लोग कुछ दूसरी धारणा ना करें, इसलिए भांडीर वन में कृष्ण के साथ में गांधर्व विवाह का भी उल्लेख ब्रह्मा के द्वारा कराया जाता है, इसका मिलता है। जब वहां पर उन्होंने विवाह कराया था, वो लौट करके आ रहे थे पुष्कर क्षेत्र से, नंद बाबा कृष्ण को लेकर के जा रहे थे, इतने में घना घोर मेघ हुआ, वर्षा की बूंदे पड़ने लग गई, घोर अंधकार हो गया। एक तो ऐसे ही मेघ से और दूसरी बात अत्यंत सघन बन के पेड़ों की छाया में, इतने में वो विश्वभानु नंदिनी आई और हाथ पसारा उनके हाथ में चले गए। और उनके हाथ में जाते ही वो दूर हट गई और परम किशोर किशोरी रूप धारण करके दोनों कोई भांडीर बन के नीचे बैठे। इतने में ब्रह्मा जी आए, ललिता विशाखा जी सब प्रकट हुए और वहीं पर उनकी शादी का भी देखा जाता है। चैतन्य चरितामृत में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण जहां दिखाया है, उसमें चौथे अवतार का कारण जो है, चौथा कारण, उसमें राधा जी की बातें इसमें दी गई। किस लिए आए उसमें उन्होंने बतलाया रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु लीलारुद्गम। अच्छा, तो ये पहला है रसिक शेखर कृष्ण, कृष्ण रसिक शेखर। अब दूसरा क्या है? परम करुण। रसिक शेखर माने अखिल रसों के वो विषय है कृष्ण। बारह रस माने जाते हैं सबके वो विषय है। अखिल रसामित सिंधु रूप गोस्वामी ने उनके उनके रूप को वर्णन किया। रसिक शेखर माने क्या? कृष्ण की एक ह्लादिनी शक्ति है जो कृष्ण को ससमय आनंदित करती है। तो ह्लादिनी शक्ति का कौन है भाई? उसको अपनी गोदी में लेकर के बैठो। शक्ति है स्वयं ह्लादिनी शक्ति के रूप में श्रीमती राधिका जी। ह्लादिनी शक्ति का सार है प्रेम, प्रेम का सार भाव है भाव, भाव के परम काष्ठा को महाभाव, और महाभाव के परम काष्ठा मादन मोदन इत्यादि हैं। ये सब का सार ये श्रीमती राधिका जी, उनके अंग प्रत्यंग इसी महाभाव से बने हैं। अपने कृष्ण को आह्लादित करती हैं और उसे पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, तो अपना जो आनंद है उसको जीवों के हृदय में विक्षिप्त कर देती हैं। जितने जीव हैं, अनंत कोटि जीव, अगिनत जीव, हम लोगों के हृदय में जो सच्चिदानंद का थोड़ा सा जो जो सुख या आनंद का जो भाव है, ये कहां से आया? राधा जी की शक्ति से आया। तीन स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां संभित संधनी
वनस्पति लता तोषाए आखी उपरी कत डाकई पाखी तदुपरी कत डाकई आवरज विपिने जमुना कुले मंच मनोहर सभित फूले बरज विपिने जमुना कुले मंच मनोहर सभित फूले मलय नीला बहाए धीरे अलिकुल मधु लोभेते फिरे अमलय नीला बहाए धीरे अलिकुल मधु लोभेते फिरे बासंती राकाम उरूप तदा बासंती राकाम उरूप तदा कोमोदी भीतरे आदरे सदा कोमोदी भीतरे आदरे सदा बरज विपिने जमुना कुले मंच मनोहरा सभित फूले बरज विपिने जमुना कुले मंच मनोहरा सभित फूले इमत समय रसिक वर आरम्भिल रास मुरलीधर इमत समय रसिक वर मुरलीधर शत कोटि गोपी माझे ते होरी शत कोटि गोपी माझे ते होरी राधा सह नाचे आनंद कोरी राधा सह नाचे आनंद कोरी बरज विपिने जमुना कुले मंच मनोहरा सभित फूले बरज विपिने जमुना कुले मंच मनोहरा सभित फूले माधव मोहिनी गाइया गीत हरिला सकल जगत चित माधव मोहिनी गाइया गीत हरिला सकल जगत चित स्थावर जंगम महिला सती स्थावर মহিলা সতী হারাওল চন্দ্রা বলির মতি, হারাওল চন্দ্রা বলির মতি, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত ফুলে, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত মথিয়া বরজ কিশোর মান অন্তরিত হায় রাধা তখন, মথিয়া বরজ কিশোর মান অন্তরিত হায় রাধা তখন, ভকতি বিনোদ পরমাদ গণে, ভকতি
বিনোদ পরমাদ গণে,
রাস ভাঙ্গল আজি রাধা বিহনে, রাস ভাঙ্গল আজি রাধা বিহনে, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত ফুলে, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত
ফুলে,
শত কোটি গোপী মাধব মন রাখিতে নারিল করি যতন, শত কোটি গোপী মাধব মন রাখিতে নারীল করি যতন, বেনুগীতে ডাকে রাধিকা নাম, বেনুগীতে ডাকে রাধিকা নাম, বেনুগীতে ডাকে রাধিকা নাম, বেনুগীতে ডাকে
রাধিকা নাম,
এসো এসো রাধে ডাক এসে শনে চলে যাবে, ভাঙিয়া রাস মন্ডল তবে রাধান্য শনে চলে যাবে, ভাঙিয়া শিরাস মন্ডল তবে রাধায়ণ্য শনে চলে যাবে, ভাঙিয়া শিরাস মন্ডল তবে রাধায়ণ্য শনে
চলে যাবে,
দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ, দেখা দিয়া রাধে
রাখহ প্রাণ,
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান, বলিয়া কাঁদয়ে
কাননে কান,
আর বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত ফুলে, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত
ফুলে,
নির্জন কাননে রাধিকা ধরি মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি, নির্জন কাননে রাধারে ধরি মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি, বলে তুহু বিনা কাহার রাস, বলে তুহু বিনা
কাহার
রাস, তুহু লাগি মোর বরজ বাস, তুহু লাগি মোর বরজ বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত ফুলে, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা, এহেন রাধিকা চরণ তলে ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া বলে, এহেন রাধিকা চরণ
তলে ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া বলে,
তো আগন মাঝে আমারে গনি, তো আগন মাঝে কিং করি করিয়া রাখো আপনি, কিং করি করিয়া রাখো আপনি, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত ফুলে, বরজ বিপিনে যমুনা কুলে মঞ্চ মনোহারা সবিত, বনস্পতি লতা তুষয়ে আখি বনস্পতি লতা তদুপরি কত ডাকয়ে পাখি তদুপরি কত বরজ বিপিনে যমুনা ফুলে মঞ্চ মনহরা সবিত ফুলে বরজ বিপিনে হরা সবিত ফুলে রমণী শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান রমণী শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীলবসন পরিধান রমণী শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীলবসন পরিধান রমণী শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীলবসন পরিধান ছিন্ন পুরট জিনি বর্ণ বিকাশিনী ছিন্ন পুরট জিনি বর্ণ বিকাশিনী ছিন্ন পুরট জিনি বর্ণ বিকাশিনী ছিন্ন পুরট আবদ্ধ কবরি হরি প্রাণ আবদ্ধ কবরি হরি প্রাণ যায় নীল বাসন পরিধান নীল বাসন আভরণ মণ্ডিতা হরিরস পণ্ডিতা তিলক সুশোভিত ভালা 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 কুঞ্চলিকা ছদাচা স্বর্ণমণি মণ্ডিতা কুঞ্চলিকা ছদিতা স্বর্ণমণি মণ্ডিতা কজল নয়নী রসালা কজল নয়নী রসালা তিলক সুশোভিত ভালা তিলক সুশোভিত ভালা আরমণি শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান আরমণি শিরমণি বৃষভানু নীলবসন পরিধান সকল তজিয়া সে রাধা চরণে দাসী হয়ে ভজ পরম যতনে সকল তজিয়া সে রাধা চরণে দাসী হয়ে ভজ পরম সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যাহার সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যা আরতি গৌরী লীলা গর্ভ পরিহার আরতি গৌরী লীলা গর্ভ পরিহার রমণে শিরমণে বৃষভানু নন্দিনী নীলবসন পরিধান রমণী শিরমণি লীলা বাসানা শচি লক্ষ্মী সত্তা সৌভাগ্য বলনে শচি লক্ষ্মী সত্তা সৌভাগ্য বলনে পরাজিত হয় যাহার চরণে পরাজিত হয় যাহার চরণে কৃষ্ণ বশিকারে চন্দ্রাবলী আদি কৃষ্ণ বশিকারে চন্দ্রাবলী আদি পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী হরি দয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী হরিদয় রাধা চরণ প্রয়াসী ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী হরিদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী হরিদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী রমণী শ্রী রমণী বিষভানু নন্দিনী নীলবসন পরিধান রমণী শ্রী রমণী বিষভানু নন্দিনী নীলবসন পরিধান জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় হে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয়
শ্রী রাধার সুখ সতত সাধনে শ্রী রাধার সুখ সতত সাধনে রহিব আমি প্রয়াসি রহিব আমি প্রয়াসি শ্রীরাধার সুখী কৃষ্ণের যে সুখ জানিব মনেতে আমি শ্রীরাধার সুখী কৃষ্ণের যে সুখ জানিব মনেতে আমি শ্রীরাধার সুখী কৃষ্ণের যে সুখ জানিব মনেতে আমি রাধার সুখী কৃষ্ণের যে সুখ জানিব মনেতে রাধা পদ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে রাধা পদ কহু না হইব কামি বৃষভানু সুতা চরণ সেবনে হইব যে পাল্ল দাসী সুতা চরণ সেবনে হইব যে পাল্ল দাস সখী গণ সম পরম সুহৃদ যুগল প্রেমের গুরু সখী গণ সম পরম সুহৃদ যুগল প্রেমের গো তদনু গহে দেখিব রাধার তদনু গহে দেখিব রাধার তদনু গহে সেবিব রাধার তদনু গহে সেবিব রাধার চরণ কল্পতরু वृषभानुसुत जरन सेवने होइब जे पाल्ल दासी वृषभानुसुत चरण राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन जे भावे से भावे थाके आमी तो राधिका पक्षपाती सदा आमी तो आमी तो राधिका पक्षपाती सदा आमी तो राधिका पक्षपाती कभु नाही हेरी ताके कभु नाही हेरी ताके वृषभानुसुत चरण सेवने होइब जे पाल्ल दासी কৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে নারে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে নারে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে নারে কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যুগল মিলন সুখে রয়াচরণ সুখের কারণ যুগল মিলন সুখের কারণ
যুগল মিলন সুখের কারণ
জীবন ছাড়িতে পারি জীবন ছাড়িতে পারি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে নারে রাধিকা চরণ ভাবিয়া মাই অনেকে বজন হয় রাধিকা চরণ ভাবিয়া মাই
অনেকে প্রলয় হয়
রাধিকা চরণ তজিয়া মাই অনেকে প্রলয় হয়
রাধিকা চরণ প্রলয়
রাধিকার তরে সতবার মরি
রাধিকার তরে সতবার মরি
রাধিকার তরে সতবার মরি
রাধিকার তরে সতবার মরি
সে সুখ আমার ময়
সুখ
কৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে নারে
কৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে নারে পাব রাধার চরণ যুগলে পরিচর্যা পাব কবে আহা প্রজন মোরে দয়া করি আহা প্রজন মোরে দয়া করি कवि ब्रज गन लावे कवि ब्रजा बन लावे विलास मंजरी अनंग मंजरी श्री रूप मंजरी विलास मंजरी अनंग मंजरी श्री रूप मंजरी आमके दुलिया लहनी जपदे आमके दुलिया लहनी जपदे देह मोर सिद्धि सार देह मोर सिद्धि सार
श्री कृष्ण विरहे राधिका रो दोषा अमित सहित नारी
श्री कृष्ण विरहे अमित सहित नारी श्री कृष्ण विरहे राधिका रो दोषा अमित सहित नारी
राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर
राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर
आजीवन मरने गति आर नहीं मोर कुले गली कदम मेरा बन कालिंदी कुले गली कदम मेरा बन कालिंदी रतन बेदी रूपर बसाव दुजन
रतन
श्याम गौरी अंगे दिवसुआ चंदन रंध श्याम गौरी अंगे दिवसुआ चंदन कामर ढूला व कवि हेरी व मुख चंद्र गाथिया माल तीर माला दिव दोहार गले गाथिया माल माला तीर माला दिव दोहार गले गाथिया
माला
अधर तुलिया दिव कर्पूर तम्बूले अधर विशाखायदि जत सखी वृंद ललिता
विशाखायदि
जत सखी ललिता विशाखायदि जत सखी वृंद ललिता विशाखा आज्ञाय करिब सेवा चरणारविन्द
आज्ञाय करिब सेवा
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु
सेवा
বায় বিলাস করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ কীর্তন এই জনকরে রাধা কৃষ্ণ নিবেদন এই
জয় জয় দেব হরি আ জয় জয় দেব হরি জয় জয় দেব হরি
জয় জয়
কালিয়া বিশ্বধর গঞ্জনা জনা जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद सुनाल यशोदा दुलाल जय जय
हम लोगों ने मंगल गीत से आरंभ किया। अरे पढ़ने तो एक मिनट के बाद मंगल गीति से हम लोग आरंभ किए हैं। मंगल गीति में जयदेव गोस्वामी जी का ये मंगलाचरण है, तो इस मंगलाचरण को हमने इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में किया। राधा जी प्रसन्न होंगी कैसे? राधा जी प्रसन्न सबसे होंगी यदि कृष्ण प्रीत हो, इसलिए हम लोग कृष्णचंद्र जी के ज्ञान वर्णन आरंभ किया। किंतु इस कीर्तन में राधा जी की ही प्रधानता है, पहले ही राधा जी का नाम दिया। जिस वंदना में जैसे सनातन गोस्वामी जी ने भक्ति रसायन में उन्हीं श्लोकों को लिया है जिसमें कि गोपियों का नाम ब्रजवासियों का नाम विशेष करते राधा जी के साथ में उनका नाम है, इसलिए उन्हीं का नाम लिया, उनसे संबंधित कृष्ण का। विषम पितामह जी की स्तुति में भी ऐसे ही लिया जिनमें गोपियों के भाव है। बाण लगा है कृष्ण के अंगों में और गोपियों की स्मृति उनको हो रही है। उसी तरह से जितने भी स्तव स्तुति हैं इसमें जयदेव गोस्वामी ने राधा कृष्ण के बहुत से अंतरंग लीलाओं का वर्णन किया, किंतु मंगलाचरण में इसको दिया। इसलिए कि ये श्रीमती राधिका जी से संपर्क से आरंभ होता है। देव जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। देवों को भी जो देव हैं उनकी ये वंदना कर रहे हैं। श्रीत कमला कुच मंडल हित मंडल हित कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय श्री कुछ कमला कुछ मंडल
राधा जी के सब जितने भी लीलाएं हैं उनको अपना कुंडल बना रखा है, नहीं तो कृष्ण का कृष्णत्व जो रसो वैसा है ये नहीं होगा। ये कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं राधा जी की, उनका कुंडल ये झलक रहा है, ये कोई सोने का और ये इसकी बात बेसी महत्व नहीं है। उनका कुंडल क्या है? राधा जी की महिमा, उनका गुण, उनका सौंदर्य, ये सबको ही अपना कुंडल बना रहा है, इसलिए कृष्ण की इतनी शोभा है। और उससे भी शोभा का पहले ही उन्होंने बतलाया सिद्ध कमला, कमला जी को आश्रय किए। कमला जी के, कमला कौन है? कमला के भी आराध्य या लक्ष्मी जी के भी सर्व आराध्य, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोदी परा। परा माने यहाँ पर जितनी भी लक्ष्मियां हैं कृष्ण भी हैं उनसे भी परा है, कृष्ण को सम्मोहन करने वाली है, ऐसी समस्त ये राधा जी के गुण हैं। उन्होंने कमला जी को अर्थात श्री राधा जी को आश्रय कर रखा है सब विषय में, आंख का आश्रय, कानों का आश्रय, हाथों का आश्रय, अंगों का आश्रय, सबका आश्रय कर रखा है, जीव का आश्रय, सबका आश्रय राधा जी। अब इसी से आप लोग इशारे से समझ जाइए, बिना उनका आश्रय किए वो रह नहीं सकते, इसलिए इसको पहले भी बंधन। अब हम लोग रूप गोस्वामी की श्रीमती राधिका जी के संबंध में जो गीतिका है हम लोग उसको, हम लोगों का यह अभिभाव उत्सव मंगलमय हो इस देश का।
माधव दईते राधे जय जय, माधव दईते जय राधे जय जय, माधव दईते शोभान दधि नवशिले खे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे विशभान लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे
राधा के चरणों में नत हुए हैं, पीछे अनुभूति